शांति, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। आज हमारे बीच भट्टी की छाप को पक्का करने या लास्ट स्टैंप लगाने आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। हम पूरे सम्मान के साथ एक हाथ की ताली से आपका बहुत 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 हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय दीदी जी अभी कल ही विदेश सेवा से लौटी हैं, तो ये हम सबका भाग्य है जो आज हमें दीदी जी को सुनने मिलेगा। आदरणीय दीदी जी वर्तमान समय ज्ञान सरोवर की डायरेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं, साथ ही ऑस्ट्रेलिया और एशिया के अन्य कंट्रीज को भी आप सुचारू रूप से संभाल रही है। बाबा आपको बड़े प्यार से सचली कौड़ी के नाम से पहचानते थे। कई बार मुरलियों में हमने इस बात को सुना भी है, तो आज मैं दीदी जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि आज का जो हमारा विषय है मनसा वाचा कर्मणा निराकारी निरहंकारी और निर्विकारी कैसे बनाए रखें, इस विषय को आप स्पष्ट करेंगी आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। समाप्ति वर्ष है। इस समाप्ति वर्ष में हमें अपनी संपूर्ण संपन्न अवस्था को पाना है, तो लास्ट महावाक्य ब्रह्मा बाबा ने यही उच्चारे, निराकारी निरहंकारी निर्विकारी। तो हमारा जो फर्स्ट लेसन था, कौन सा फर्स्ट लेसन था? आत्मा हूं। पहले तो बाबा ने ये पक्का कराया कि तुम आत्मा हो, फिर उससे ऊपर की स्टेज कौन सी है? आत्मिक भान में रहना है। फिर दूसरा क्या है? फरिश्ता रूप अथवा अशरीरी अवस्था। तो चलते फिरते शरीर को भूल अपने को फरिश्ता समझकर कर्मयोग करना है, क्योंकि कर्मयोग भी करना है और शरीर का भान भी भूलना है। तो फरिश्ते हैं वो आवाज नहीं करते, फरिश्तों की दुनिया में आवाज नहीं, मूवमेंट है, हलचल है, आना जाना और इशारों से बात करते हैं। अर्थात हमें धीरे बोलना है, कम बोलना है, मीठा बोलना है और एसेंस और उसके ऊपर की अवस्था है अशरीरी और निराकारी। अशरीरी के ऊपर है निराकारी स्थिति। तो बिंदु बनकर बिंदु को याद करना है और शुरू शुरू में तो जब याद में बैठते हैं तो क्या करना है? बिंदु बन जाना है, क्योंकि जब आत्मभान में बाबा से रूहान करते हैं या समझो ज्ञान का मनन मंथन करते हैं, क्योंकि पहली स्टेज योग की हो गई मनन मंथन करना। दूसरी स्टेज फरिश्ते रूप में हम बाबा से चिट-चिट करते हैं, और फाइनल है निराकारी स्थिति में रहकर निराकार को याद करना। तो उसमें क्या है कि हमें कोई संकल्प नहीं, कोई चिट-चिट नहीं, मंथन नहीं, बस बाबा की याद में मग्न हो जाना। और उसी स्थिति में हमको बहुत ही लाइट और माइट का अनुभव हो सकता है। मैंने थोड़ा बीच में जगह है ना, पूरी करो, वहां रास्ते में नहीं बैठो। आप लोग जो रास्ते में बैठे हैं जरा आगे आकर बैठे, यहाँ बहुत जगह है। तो इसलिए क्या है, हमें जब बिंदु बनकर बिंदु की याद में बैठते हैं ना, तो क्या होता है, बहुत जैसे हमें लाइट माइट, जैसे हम बाबा के स्नेह के फवारे में मस्त हो जाते। स्नेह है, शक्ति है, खुशी है उसका, जैसे कि हमारे ऊपर बहुत प्राप्ति होती है। तो ये स्थिति पहले तो हमें योग में जमानी है, फिर चलते फिरते, पर पहले तो योग में हो। तो इसलिए ये स्थिति तो फाइनल है, परंतु अभी हमें अशरीरी अवस्था में ज्यादा रहना है, क्योंकि जितना जितना आत्मिक भान में रहने का, अशरीरी अवस्था में रहने का चलते फिरते अभ्यास हो जाएगा, तो फिर धीरे धीरे निराकार स्थिति में रह सकते हैं। पर वो स्थिति बहुत ऊंची है। दूसरा पॉइंट है निराहंकारी। तो ब्रह्मा बाबा कितना निरहंकारी था, आज भी क्या कहा, मैं क्या हूं, बच्चों की सेवा पर उपस्थित हूं, सर्विस करने आया हूं, आज भी बताया, और हर रोज नमस्ते कहते हैं। बच्चों को कहते हैं जरूरत नहीं है नमन वंदन करने की, पर खुद रोज बच्चों को नमस्ते कहते हैं। और प्रैक्टिकली क्लास के अंत में जाते जाते नमस्ते करते थे, और इतना निरहंकारी थे कि कपड़े नहीं बदले, जो पहले धोती और कुर्ता पहनते थे बाबा बनने के बाद भी वही ड्रेस रखा। कभी स्टेशन पर हम लोग जावें, वहां कोई संगठन हो, पसंद नहीं करते थे, कहता था मैं गुप्त हूं, गुप्त रहना है, बच्चों को क्लास में स्वागत करना है, स्टेशन पर नहीं आना है। फ्लाइट में तो कभी चढ़े ही नहीं, परंतु स्टेशन पर भी न स्वागत के लिए न विदाई के लिए आने देते थे, और न तो हार गुलदस्ते स्वीकार करते थे। कहते थे ये तो देवताओं के लायक है, मैं तो अभी ब्राह्मण हूं, पूजनी नहीं बना, पुजारी हूं अभी भी। तो इसलिए न वो स्वीकार करते थे, न मान पान की दरकार है। उन्हीं दिनों में शंकराचार्य घूमते थे तो साथ में कारों का काफला होता था, 10-15 कार, और इतने उनके फॉलोअर्स सब साथ में जाते थे। और शंकराचार्य की कुर्सी चांदी की, तो पहले उसका आसन कार में जाएगा, पीछे वो कार में बैठेगा। पहला उसका आसन संदली पर जाएगा, पीछे शंकराचार्य जाएंगे। और कई साधु संत महात्मा, उनकी प्राइस फिक्स थी, सत्संग कराते थे ना, कोई सप्ताह भागवत सप्ताह करते थे, रामायण सप्ताह करते थे, उनकी प्राइस फिक्स, इतना खर्चा होगा। उसके साथ जो आएंगे वो समझो कुछ पूजा करते रहेंगे, सारा समय नाम स्मरण करते रहेंगे, उसका इतना और हम लोग भी वैष्णव जब हरिद्वार जाते थे ना, भोग लगवाना है, ईश्वर का भोग लगाना है तो इतना, फलाना भोग लगाना है तो इतना, और यहाँ बाबा के भंडारे में तो जितना डालना है डाल। तो क्या है कि बाबा खुद निरहंकारी रहे, हमें भी निरहंकारी बनना है। और निरहंकारी आत्मा की क्या निशानी है कि निरहंकारी आत्मा है, हरेक को सम्मान देंगे, छोटा बड़ा समान सबको सम्मान। और दादी जी को किन्हों ने देखा है, जरा हाथ उठाना, देखो काफी ने अपने दादी जी को देखा होगा, कितना मान देती थी। हमें भी निर्मला बहन कह के बुलाती थी, या डॉक्टर निर्मला। और समान दादियों को भी दादी दादी करके बोलती थी, पहले आप। और बड़ों को तो मान देना, ये तो भारत की प्रणाली है, बड़ों को देना वो तो प्रणाली है। जैसे यहाँ भी अभी भी देखो, जो भी इंचार्ज होगा ना अपने डिपार्टमेंट का, भाई साहब भाई जी ऐसे करके बुलाएंगे। तो क्या है, बड़ों को तो मान देते हैं, पर समान को मान देना, छोटों को मान देना, ये निरंकारी है। क्योंकि बाबा कहते हैं मैं ओबीडियंट सर्वेंट हूं, ऑन गॉडली सर्विस करके साइन करते थे। जैसे बाबा कहते हैं अंग्रेजी लॉर्ड मिंटो, परंतु वो भी ऑन गवर्नमेंट सर्विस ऐसे करके साइन करते थे अपना, तो इसी रीत से अपने को सेवाधारी समझना है। बड़ी दीदी भी कहती थी टीचर्स को टीचर नहीं समझो, अपने आप को सेवाधारी समझो। टीचर समझने से घमंड आ सकता है, सेवाधारी समझने से नम्रता आती है। और हम कहते हैं कि जितनी व्यक्ति गुणवान होंगी उतनी नम्र होंगी। जैसे जितने पेड़ पर फल ज्यादा होंगे उसकी डालियां नीचे नमेगी। और गुजराती में कहावत है नमे सो गमे, जो नमन करता है वो सबको भाता है। तो जो ईगोलेस अहंकारी है वो क्या है, मैं नहीं करता हूं, मैंने किया, वो अपनी बढ़ाई नहीं करता है। जो ईगो वाला होगा ना सारा दिन अपनी बढ़ाई, मैंने ये किया, मैं ऐसा हूं, मैं स्कूल का हूं आदि आदि बोलता रहता है। या ब्राह्मण भी है क्या कहेंगे, मैंने भाषण किया सबको अच्छा लगा, मैंने योग कराया सभी प्रभावित हो गए, सभी को बहुत अच्छा लगा। तो मैं होता है उनके अपनी विशेषता का थोड़ा घमंड रहता है। परंतु जो निरहंकारी है वो क्या कहेगा, बाबा ने कराया, करावनहार वो है, मैं तो करनहार हूं, बाबा ने मेरे में गुण भरे हैं। कोई कहे ना कि आप तो बहुत मीठे हो, आप तो बहुत लवली हो, आप तो बहुत प्यारे हो, तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, महिमा नहीं स्वीकार करेंगे, कहेंगे बाबा ने बनाया है हमको। तो भल किसी किसी में कोई कोई गुण होते हैं, परंतु क्या होता है जब ज्ञान में आते हैं तो क्या है, जैसे बाबा सोने में सुगंध भरता है, गुण तो थे उसमें भी विशेष और भरता है गुण। तो क्या है, मैं मिसाल बताती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में काफी एक्टर्स आर्टिस्ट हैं, वो अपना बताते हैं कि ज्ञान के पहले हम अच्छे एक्टर थे, हमारी महिमा होती थी, परंतु स्टेज पर जाकर जब पहले दिन होता है ना तो रिपोर्टर बहुत आते हैं और उसका समझो क्रिटिसिज्म और रिपोर्ट आता है कि एक्टर ने कैसी एक्टिंग की, ये नाटक या फिल्म कैसी थी आदि आदि। तो कहा कि उस दिन हम नर्वस हो जाते थे, अभी ज्ञान के बाद नर्वस नहीं होते, कॉन्फिडेंस आ गया। तो क्या है, विशेषता थी परंतु ज्ञान में आने के बाद और भी एक विशेषता आ गई कि अपने में आत्मविश्वास आ गया। और एक दूसरा म्यूजिशियन था, प्ले करता था पियानो, तो उसने अपना अनुभव सुनाया। एक दिन एक बहुत फेमस सिंगर था न्यूजीलैंड का पुराना, और स्टेज पर आकर नर्वस हो गया कहा मेरा तो गला बंद हो गया है, मैं तो गा नहीं सकता हूँ आज। तो ये जो मेडिटेशन करने वाला अपना म्यूजिशियन भाई था, उसने उसको सांत्वना दी, योग कराया थोड़ा, और वो गाना शुरू किया। मतलब न सिर्फ खुद में आत्मविश्वास आता है, परंतु दूसरों को भी दिला सकते हैं। और जो ईगो वाला है उनको मान चाहिए, वो अपना कोई क्रिटिसाइज करे सहन नहीं कर सकेगा। जो ईगोलेस है, निरंकार है, उसको कोई मान दे ना दे, कोई अपमान करे, क्योंकि स्वमान में रह सकता है, ज्ञानी है स्वमान में रहता है, तो उसको फील नहीं होता है। और जो निरंकारी है औरों की भावना समझ सकता है, उसकी क्या फीलिंग है समझ सकता है। ईगो वाला, उसको एक्सपेक्टेशन होता है कि मैंने ये कहा है इसलिए ये होना चाहिए, मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो, तुमको ये करना है, तो अपेक्षा रहती है। परंतु जो निरंकारी है वो क्या करेगा, उनको सिखाएगा ऐसे करो ऐसे करो, एक बार सुधारेगा दूसरे बार ही सुधारेगा, इंसल्ट नहीं करेगा। तो दूसरों को वो एनकरेज करेगा, उन्हों में भी शक्ति भरेगा जो निरहंकारी है वो। और किसी का क्रिटिसाइज नहीं करेगा, बॉसी नहीं होगा। अभी अपने आप को देखना है कि हम कहां तक निरंकारी बने हैं, क्योंकि और कुछ ना हो, अपनी विशेषता का भी अभिमान ना हो और अपनी बड़ाई का भी ख्याल ना हो। नहीं तो क्या करते हैं, माँ बाप कहेंगे हम बड़े हैं ना, हमने इतनी दिवाली निकाली है, हम जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। और बच्चे ज्ञान देंगे तो तुम क्या जानते हो, तुम तो अभी अभी पैदा हुए हो। और भी बच्चों को कहेगा ये पढ़ाई पढ़नी है तुमको, बच्चा कहेगा नहीं वो करनी है, नहीं यही करनी है, तो अपना हुक्म चलाता है कि मुझे ये चाहिए, तुमको ये सब बनना चाहिए, ऐसा करना है, जो ईगो वाला है। अभी हमको देखना है निर्विकारी, वो बड़ा टॉपिक है। और जैसे पहले हमको बाबा ने शिक्षा दी, योगी बनो पवित्र बनो, ये बाबा की हमारे लिए पहली शिक्षा है। तो जितना आत्मभान में रहेंगे योगी बनेंगे, जितना योगी बनेंगे पवित्र बनेंगे। तो पहला विकार है, मूल विकारों का है देहभान, देह अभिमान। अभी देही अभिमानी और देह अभिमानी की क्या निशानियां हैं वो हमारे समक्ष क्लियर होनी चाहिए। देहभान में है वो क्या करेंगे, क्या करेंगे? क्या कहेंगे? क्या निशानी है देवभान वालों की? देवभान वालों को अपनी पर दया मांगेंगे, कहेंगे मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरी माँ है, मेरी बहनों को प्यार करती है, उसको सब कुछ देती है, भाइयों को सब कुछ देती है, मुझे कुछ नहीं देती, हमारी टीचर है, फलाने को कोर्स देंगी, फलाने को देंगी, हमको नहीं देती। तो जैसे अपने पर वो दया मांगती है, फिर नर्वस हो जाएंगे देवभान वाले, कॉन्फिडेंस नहीं, प्रवचन देना होगा, इंटरव्यू देनी होगी, परीक्षा होगी, तो क्या होगा, कितना भी तैयारी की होगी, उस समय नर्वस होकर भूल जाएंगे या ऐसे ऐसे बोलेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं तो बोलना ऐसा ऐसा हो जाता है ना। कॉन्फिडेंस वाला क्या बोलेगा? आत्मविश्वास से बोलेगा। तो इसलिए नर्वस हो जाएंगे। देवभान वाले बाह्यमुखी होते हैं, वो सब देखेंगे बाह्यमुखी, ये कहाँ है, ये क्या है, यहाँ किसने कपड़े क्या पहने हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किससे बोलते हैं, क्या करते हैं, व्यक्तियों को देखेंगे, उसके रूप को देखेंगे, उसके कपड़ों को देखेंगे, उसके बालों की स्टाइल देखेंगे, यहाँ तो इतना नहीं होता है बालों की स्टाइल, विदेश में तो बालों की स्टाइल, बालों का कलर सब कुछ देखेंगे, कैसे जोर जूता पहना है, कैसी हैंडबैग है, सब मैचिंग है या नहीं, आदि आदि। और उसका लक्ष्य होगा कि अपने तरफ सब आकर्षित हों, ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसे बोल चाल करेंगे, एक्टिंग करेंगे, जो सब उसके तरफ ध्यान देवे। और अपनी डिमांड रखेंगे, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और अपना टाइम, मनी, एनर्जी अपने शरीर पर लगाएंगे, अर्थात स्नान में इतना टाइम लगाएंगे, और शॉपिंग में इतना टाइम लगाएंगे, और अपना वजन रेगुलरली करेंगे, कि इतना फैट ना हो। तो आजकल तो क्या है, ये माफ करेंगे ना, यहाँ माफ करेंगे, यहाँ माफ करेंगे, वजन करेंगे, ऊंचाई माफ करेंगे, और डाइटिशियन के पास जाकर सलाह लेंगे क्या खावे क्या नहीं खावे, वजन कर करके खाना होता है, जैसे कि चपाती खानी है, इतना ही ग्राम का खाना खाना है, तो अपनी बॉडी पर इतना ध्यान देते हैं, ब्यूटी पार्लर पर जाएंगे, वहाँ खर्च करेंगे, आँख ऐसी होनी चाहिए, यहाँ के ऐसे होने चाहिए, यहाँ के ऐसे होने चाहिए, और इतने तक प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं आजकल, आँख ऐसी हो, चाइनीज लोग है उनको आँख सीधी चाहिए, इंडियन है उसको आँख चाइनीज जैसी चाहिए, मीनाक्षी जैसी, नहीं तो क्या है, अपने शरीर पर खूब ध्यान देंगे। आत्मा के लिए उनको चिंता नहीं है, मन कैसा है, बुद्धि कैसी है, संस्कार कैसे है, उसके ऊपर जरा भी ध्यान नहीं है। और समाज को फॉलो करेंगे, जो सारा लोक लाज है ना, उनको बहुत है ना, तो लोगों को क्या पसंद है उसको वो उनको करना है, लोग उसकी निंदा ना करें, वो निंदा सहन नहीं कर सकते अपनी, और औरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। पद चिंतन में टाइम लगवाते हैं, प्रदर्शन पद चिंतन जैसे भी समय मिला फ्रेंड्स को फोन किया, जैसे भी समय मिला हम वहां गई थी अभी इंडोनेशिया से आई, तो हमने कुमारियां हमारे सामने बैठी थी, हमने पूछा सोशल मीडिया में कितना घंटा लगाते हैं, 3-4 घंटा रोज सोशल मीडिया पर, और एक बहन तो 7 घंटा रात को 1-1 बजे तक फेसबुक सोशल मीडिया। हमको बंबई की भी एक बहन जी बता रही थी कि बहने रात को फोन करती रहती है, पता नहीं क्या करती है, सोती ही नहीं, कमरे में जाकर भी फोन पर, सेंटर पर रहने वाली बहने इतना समय फोन पर लगाती है, कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, बोलो तो कहे हम घर जाते हैं, हाँ? और हंसना मजाक उड़ाना ये है देहाभिमान की निशानी। और कई तो क्या है, हमारे पास एक डांसर थी, बैले डांसर, तो उसका जो बॉस था कहे वजन बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, खाई बिचारी फिर क्या करेंगी, खाना तो खाना पड़ता है, भूख लगती है, फिर क्या करती थी, वजन ना बढ़े इसलिए हाथ डाल के उल्टी करके निकाल देती थी कि वजन ना बढ़े। तो ऐसे ऐसे देहभान वाले अपने आप को या तो बहुत टाइम देते हैं या तो दुखी होते हैं, यदि वजन ज्यादा है, काला कलर है तो दुखी होंगे कि सब तो गोरे है मैं काली हूं। अच्छा, तो देहभान के बाद दूसरा विकार है कौन सा, बड़ा शत्रु है हमारा, काम महाशत्रु है। अभी काम महाशत्रु है, चलो विकार में तो नहीं जाते, हमारे ब्राह्मण हैं, बाबा ने बहुत शक्ति दे दी है, विकार में तो नहीं जाते, पर सूक्ष्म विकार, काम विकार के सूक्ष्म रूप क्या है, आकर्षण, अच्छा है माना, आकर्षित हो जाते हैं, व्यक्ति वैभव साधनों से आकर्षित हो जाते हैं कि ये मोबाइल फोन बहुत अच्छा है, 4G है, 5G है, वो चाहिए हमको, आकर्षित हो जाते हैं। किसी का कार में मुंह होता है, देखते रहते हैं कौन सी कार है, कौन सा कलर अच्छा है आदि आदि। कोई कोई मोटर बाइक के ऊपर आशिक होते हैं तो मोटर बाइक को देखते रहते हैं कौन सी मेक अच्छी है। तो एक है आकर्षित, व्यक्ति या वस्तु आकर्षण। दूसरा क्या होता है, क्या होता है सूक्ष्म काम विकार का रूप, क्या है, प्रभावित होना। कोई अच्छा लेक्चरर है, अच्छा योगी है, कोई अच्छा मकान है, तो क्या कहेंगे, वाह कितना अच्छा है। भूल जाते हैं भाई बाबा ने इस व्यक्ति को ज्ञानी योगी बनाया है। तो करावन हार की महिमा नहीं, करने वाले की महिमा, उनसे प्रभावित हो जाते हैं। तो एक है आकर्षण, तो आकर्षण होता है कि हम भी उससे फ्रेंडशिप रखें, उनसे बातचीत करें, उनसे संबंध बनाएं, प्रभावित होकर उसका गुणगान करेंगे। पहले देवी देवताओं का करते थे ना, अभी व्यक्तियों के गुणगान करेंगे या वस्तु के। तीसरा है फैमिलियरिटी। फैमिलियरिटी में क्या करते हैं, सारा दिन उनके साथ बातचीत करना, अपनी जीवन कहानी आदि से अंत उसको मालूम होंगे, वो क्या सोचते हैं सब जैसे एक दो को समझ लेते हैं। अच्छी बात हुई उसको जाके फोन करेंगे, बोले हाँ ये हुआ। बुरी बात हुई उसको फोन करेंगे। अभी बाबा को फ्रेंड बनाना चाहिए ना, तो बाबा को फ्रेंड बनाकर सुख दुख की बात करने के बजाय उस व्यक्ति से करते हैं। यह है फैमिलियरिटी। और है नाम रूप का प्यार। उस व्यक्ति का नाम जपते रहते हैं, पहले राम राम नाम नाम जपते थे, अभी वो पत्नी है सारा दिन कहेंगे हमारे पति ने ये किया, हमारा पति ऐसा है, हमारा पति वैसा है, पति पत्नी के बारे में मेरी पत्नी ऐसी है वैसी है, ये करती है वो करती है। माँ बाप अपने बच्चों का नाम लेते रहेंगे, उसका गुणगान करते रहेंगे। तो ये हुआ नाम का प्यार और रूप, नाम रूप का प्यार। उसका नाम जपेंगे तो जरूर उसका रूप सामने आएगा ना। पहले राम नाम जपते थे तो राम को याद करके राम नाम करते थे, अभी जिसका गुण गान करेंगे रूप भी तो उसका सामने आएगा। तो ये है नाम रूप का प्यार। और कई बार बाबा क्या कहते हैं, काम विकार और कामना इच्छाएं दोनों में आ सकता है, लोभ में भी इच्छा आ सकती है, सूक्ष्म विकार काम विकार में भी। क्योंकि क्या होता है काम विकार में फिर इच्छा होती है ना, ये अच्छा है चलो हम खरीद ले हुए हैं, या ये व्यक्ति अच्छा है चलो हम उससे मिले बातचीत करें, हाथ पकड़े गले लगाएं ये करें, वो इच्छा होती है। अच्छा फिर होता है दूसरा बड़ा विकार कौन सा है? क्रोध। अभी क्रोध का सूक्ष्म रूप क्या है? क्रोध में तो क्या करेंगे, बड़े रूप में जोर शोर से बोलेंगे, किसी को मारेंगे, पीटेंगे, आवाज करेंगे। दूसरा सूक्ष्म रूप क्या है? कारण क्या है, क्रोध क्यों आता है? सहन शक्ति की कमी, धीरज की कमी। एक बार कहा, दो बार कहा, अभी नहीं सहन कर सकते, धीरज नहीं। सहन कहां तक करें हम, तो गुस्सा आ गया। फिर गुस्से वाला क्या है? फोर्स से बात करेगा, सूक्ष्म रूप है, फोर्स से बात करेगा, जोर शोर से बात करेगा, टेबल पर हाथ लगाकर बात करेगा, पांव जमीन पर पछाड़ेगा, दरवाजे पर भटकाएगा। फिर क्रोध माना कभी कभी क्या कहेंगे, ये अपसेट हो गया है, उसका मूड खराब हो गया है। और दूसरा है फ्रस्ट्रेशन का, हिंदी क्या होता है फ्रस्ट्रेशन? एक है इरिटेशन, एक है अपसेट, एक है फ्रस्ट्रेशन। जैसे नासी पास हो जाते हैं ना, कि हमने ये सोचा था हुआ नहीं, फ्रस्ट्रेशन। और गुस्से वाला खूब दलील करता रहता है, चर्चा विचार में चला जाता है, और उसके आंखों से मालूम पड़ जाता है, उसके चेहरे से चेहरा लाल लाल हो जाएगा, आंखें में देखेंगे, चेहरा देखकर मालूम पड़ जाएगा ना इसको गुस्सा है, चेहरे पर भाव भाव आ जाएगा। और कोई है वो क्या करते हैं, उसको पैसिव एग्रेशन कहते हैं अंग्रेजी में, वो देखता है सामने से, यहां से आता है ना, वहां से चला जाएगा, के सामने आएंगे, हंसना पड़ेगा, ओम शांति कहना पड़ेगा या नमस्ते कहना पड़ेगा, तो यहां से वो आता है, वहां से चले जाएंगे, सामना ही नहीं करना पड़े, दूसरी साइड पर चले जाएंगे। और एक है जो करना है करो, हमको पूछ के नहीं किया इसलिए हम कॉपरेशन नहीं देंगे, जो करना है तुमको करो। तो नेगेटिव हो जाते हैं और सहयोग नहीं देते हैं। तो ये हुआ गुस्से का सूक्ष्म स्वरूप। अभी है लोभी। लोभ का सूक्ष्म स्वरूप क्या है, कैसे मालूम पड़े ये लोभी है? लोभी क्या करेगा? खूब लेता जाएगा, खाना थोड़े में संतुष्ट नहीं होगा, खूब खाएगा, अच्छा लगा बहुत खाएगा, बुरा लगा अच्छा नहीं लगता है, भूख नहीं है। और लोभी है ना, उसका घर देखो, खरीदारी करता गया तो स्टॉक कितना भरा पड़ा है, कबट भरे पड़े हैं, पुराना निकालते नहीं, नया खरीदते रहते हैं। तो उसके घर में खूब सामान भरा पड़ा होगा, और कभी संतुष्ट नहीं, लोभी को कितना भी दो संतुष्ट नहीं, और जो लोभी है स्वार्थी होगा। अपने लिए सब कुछ करेगा और लोभी है मनहूस होगा। दान पुण्य करना नहीं आएगा, भर करोड़ों के रुपये भरेंगे 500 रुपया देने में भी सोच करेगा। फिर दूसरा कौन सा विकार है अभी? मोह। मोह की निशानी क्या है? मोह किसके साथ होता है? लगाव किसके साथ होता है? मोह ही लगाव है ना। लगाव किसके साथ होता है? मेरा। जहाँ मेरा है, चाहे मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरी डायरी है, मेरी पेन है, लगाव हो जाता है अपने साधनों से। और लगाव किसके साथ होता है? जिसका सहारा लेते हैं। देखो, एक है सहयोग, है सहयोग सबको देना है, पर सहारा उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। जैसे बच्चे हैं, माँ पर डिपेंड हो जाते हैं ना। माँ खाना खिलावे तब चखाएंगे, माँ ले आवे, माँ सब कुछ करती है, माँ के साथ लगाव हो जाता है तो डिपेंड। तो जहाँ डिपेंडेंट है, तो जो डिपेंडेंट बनाते हैं, माँ का बच्चों में मोहंगा और बच्चों का ना में, क्योंकि माँ सहारा देती है, बच्चे सहारा लेते हैं, दोनों एक दो के डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे बन जाओ, पहले मेरे से सब कुछ सहारा लो। जब एक मेरा सहारा रखेंगे, दूसरे सहारे छूट जाएंगे। इसलिए मुंह तोड़ना है तो बाप से सर्व संबंध जोड़ना है। और जो जिनका जिसमें मोह होगा है ना, उनका फिर अपेक्षा रहेंगे, भाई तुम मेरा पति हो, तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुम्हारी ड्यूटी है धन कमाकर हमारी पालना करने की। बच्चे है, तुम्हारी ड्यूटी है हमारी आज्ञा मानने की। तो मेरा बच्चा है, तुमको मेरा कहना मानना है, अपेक्षा हो गई। और जिसका जिसमें मुंह होगा, फिर क्या करेंगे? समझो आज माँ है, चार बच्चे हैं, एक में विशेष मुंह है, तो माँ क्या करेंगे? उसके लिए उसकी पसंदगी की चीजें है ना, बाजू रख देंगी, पहले उसको देंगी, पीछे दूसरे बच्चों को देंगी। तो उसकी फेवरेट, उसको क्या करेंगे? उसको पहले सब देंगे। और अभी बाकी सूक्ष्म विकार कौन से हैं? ये तो ईगो हो गया, अहंकार ईगो हो गया। अभी है अलबेलापन, आलस्य। अलबेलापन माना क्या होगा? अलबेले क्या करेंगे? अलबेले की निशानी क्या होगा? देखेंगे, हो जाएगा, ऑर्गेनाइज नहीं, लास्ट मिनट दौड़ भाग करेंगे, या समझेंगे फलाना कर लेगा ना अभी। तो वो समझता है और कर लेंगे, और कुछ नहीं हुआ तो कहेंगे फलाने ने मदद नहीं की, ये कारण हुआ वो कारण, तो बहुत कारण देंगे। और जो अलबेले है भूल जाएंगे, अरे मैं तो भूल गया। और जो अलबेले है खूब खर्चा करेंगे, समय शक्ति धन एनर्जी व्यर्थ गंवाएंगे, केयरफुल नहीं, संभाल के नहीं करते हैं ना, तो नुकसान भी करेंगे। तो इसलिए केयरफुल बनना है, ध्यान रखना है, सावधान रहना है और समय की शक्ति के मूल्य समझना है। और हम करेंगे तो हम पाएंगे, दूसरा करेगा उसको मिलेगा। फिर है आलस्य, अलबेलापन, आलस्य। आलसी क्या करेगा, सारा दिन बैठा रहेगा, आराम से आराम कुर्सी पर बैठा रहेगा और थक गया, वो थक जाता है, उसको उमंग उल्लास नहीं। जो उमंग उल्लास होगा ना वो कभी आलसी नहीं रहेगा, तो वो जो आलसी होगा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। फिर है और कौन से विकार है, ईर्ष्या। ईर्ष्या क्यों आती है, सम्मान की कमी। कि फलाना मेरे से ज्यादा खूबसूरत है, उसकी महिमा होती है, मेरी नहीं होती, तो ईर्ष्या वाले क्या करेंगे, उसको गिराने की कोशिश करेंगे। हाँ तुम समझती हो ये बहुत अच्छा है, परंतु इसने तो ये किया वो किया, इस समय वो किया, तो वो जो उसने गलत किया है बात सबको सुनाएंगे। तो आजकल क्या है, एक दो से भेंट करते हैं और उस भेंट करने में खुद इतने चालाक नहीं है, तो ईर्ष्या आती है, उसको सब मान देते हैं, उसको सब काम देते हैं, उसको सब पे बढ़ाते हैं, आगे करते हैं, तो इसलिए गड़बड़ करते हैं। फिर तो वो अपने आप को सिक्योर नहीं समझता है कि उनका सब काम होगा, उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको प्रमोशन मिलेंगे, मुझे नहीं मिलेंगे, तो दुखी होते हैं। तो क्यों है, क्या है, आजकल कंपटीशन बहुत है समाज में और खुद इतने कॉम्पिटेंट नहीं होंगे तो ईर्ष्या आएंगे। और फाइनल क्या है, बाकी क्या रहा, वैर। वैर की भावना, और किसी को हेट करते हैं। तो जिसके अंदर वैर की भावना होंगी वो सुख स्थूल में तो क्या करेंगे, हिंसा, मारना पीटना मार डालना, और अपने हाथ में कायदा ले लेंगे। आजकल इंडिया में तो क्या करते हैं, अपने हाथ में। उसने रेप वहां किया तो 15-20 जने आके मारपीट करेंगे। मैंने देखा आजकल तो कितनी मारपीट करते हैं, जला देना, बस इस जलाना, कार जलाना, पत्थरबाजी करना, कितना हिंसा करते हैं। तो कायदे अनुसार कंप्लेन करके उनको शांति नहीं रहती, परंतु वैर लेते हैं। और जो वैर की भावना है ना, वो क्या करेंगे, कोई ऊंचे जाता है ना, उसको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। और उसके बारे में गलत बातें फैलाते रहेंगे। तो जितना आम निराकारी रहेंगे तो क्या होगा, ये सब विकार खत्म। और शुभ भावना और शुभकामना, स्नेह की भावना रहेंगे। जैसे बाबा था ना, क्या करता था, कहता था, निंदा जो हमारी करे मित्र समहारा सो। मित्री की भावना, वैर की भावना नहीं। और गाली देने वाला को गले लगाओ, जितना प्यार हो, क्योंकि जितना प्यार होगा उतना वैर नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, शुभ भावना रहेंगे। इसलिए जितना निराकारी बनते जाएंगे, शुभ भावना, शुभकामना, हरेक के प्रति प्यार की भावना, हरेक को सहयोग देंगे और उनको ऊंचा उठाने की कोशिश करेंगे, गिराएंगे नहीं। तो इसलिए जो बाबा ने हमें बनाया है या बनाना चाहता है, अभी हमारा काम क्या है, बाबा ने इतना ज्ञान दिया, वो ज्ञान स्वरूप बनना है, स्नेह स्वरूप बनना है, योग युक्त बनना है। तो इसलिए जब योग युक्त होंगे, गुण ऑटोमेटिक आ जाएंगे, विकारी से निर्विकारी बन जाएंगे। तो लक्ष्य रखना है, अपने आप को चेक करते रहना है कि हमारे में कोई भी सूक्ष्म विकार का अंश तो नहीं है। बड़े विकार तो जल्दी छोड़ दिए, पर सूक्ष्म विकार, किसी को इम्प्रेस करने की भावना, बोल चाल ना, जैसे नहीं कोई एक्टर होते हैं ना, उसकी कॉपी करेंगे, जिसके साथ उनका स्नेह होगा या मान रखते होंगे ना, उनका हीरो होंगे। देखो आजकल जवान लोग क्या करेंगे, विराट कोहली जैसे बाल बनाएंगे, दाढ़ी बनाएंगे, जो भी हीरो होगा उसका, शाहरुख खान का लिए प्यार होगा तो उनके जैसे बोल चाल करेंगे, एक्टिंग करेंगे, कपड़े पहनेंगे उन जैसे। तो लक्ष्मी नारायण को फॉलो करने के बजाय इन एक्टर्स को फॉलो करेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, अभी हमारा लक्ष्य सामने रखना है। ब्रह्मा बाबा है, लक्ष्मी नारायण है, कितना क्लियर पिक्चर हो। बाबा ने आज क्या कहा, स्वर कितना नजदीक है, जितना आत्मा और शरीर नजदीक है, इतना स्वर्ग नजदीक हो तो स्वर्ग के नजारे क्लियर होंगे। तो इसलिए जहां जाना है, जैसा बनना है, वो अभी से बनना है कि सदैव हर्षित मुख, चेहरा कभी उदास नहीं। सुख का सागर मिला है, खजाने इतने दे रहे हैं, तो हमें क्या होना चाहिए? खजाने के मालिक हैं तो संतुष्ट होंगे, लोभ थोड़ी रहेगा। जो संतुष्ट है लोभी नहीं होगा। जो देही अभिमानी है दे अभिमान नहीं होगा। जो निरंकारी है अहंकार ऑटोमेटिक छूट जाएगा। तो इसलिए गुण जितना धारण करेंगे, शक्तियां जितना धारण करेंगे, तो क्या होगा? गुण संपन्न, कला संपन्न बन जाएंगे। अपने लक्ष्य तक पहुंच जाना है, यही बाबा की हम बच्चों के ऊपर अपेक्षा है। मैंने तुमको इतना ज्ञान दिया है, अभी स्वरूप बनो, संपन्न बनो। ओम शांति। अभी हम छुट्टी लेंगे, वैसे तो विचार था 7:30 योग करेंगे यहाँ, परंतु लास्ट मिनट हमको प्रोग्राम मिला कि आज ज्ञान सरोवर में 7:30 फ्रूट बांटना है, तो इसलिए अभी छुट्टी लेंगे।
ओम शांति। हमको तो फ्रूट खिला दिया ना दीदी ने। हाँ, बहुत अच्छा खाया ना, वैरायटी खाया। तो बहुत बहुत थैंक्स दीदी का, खास यहाँ तक क्लास कराने के लिए आया। फिर अभी जल्दी जाना भी है, और मैं समझती हूँ काफी प्रैक्टिकल बातें थी, टिप्स काफी मिल गए ना, हमें अपनी स्थिति कैसे बनानी है। इसलिए बार बार दीदी का धन्यवाद, फिर भी हम आपसे सुनते रहेंगे।